ஓம் சாந்தி. ஏக் பல் ஏக் பரோசா துவாரா அச்சல் அடோல் ஸ்திதி அன்பா கர்ணா மதுவன்மே பியாரே பிரம்மா பாபா கே அச்சல் அடோல் ஸ்திதி கா யாத்கார் சாந்தி ஸ்தம்ப கே ரூப் மே ஹே. ஸ்தம்ப அர்த்தாத் பஹத் ஊஞ்சி ஸ்திதி, அநேக ஆத்மாவோ கோ பிரேரணா தேனே வாலி ஊஞ்சி ஸ்திதி. தூஸ்ரா ஸ்தம்ப அர்த்தாத் அச்சல் அடோல் ஸ்திதி, இஸ்கே சாத் ஆபு பர்வத் பர் விசேஷ அச்சல் கட் கி பி யாத்கார் பாயி ஜாதி ஹேம். அச்சல் கட் பியாரே பிரம்மா பாபா ஓர் ஹம் பச்சோ கி அச்சல் அடோல் ஸ்திதி கா யாத்கார் ஹேம். அர்த்தாத் ஹம் சபி பாபா கே பச்சோ நே ஹர் கலப் ஏசி அச்சல் அடோல் ஸ்திதி பிராப்த கீ தி, உஸ்கி யாத்கார் ஆஜ் பி ஹமே திகாயி தே ரஹி ஹேம். तो ऐसी अचल अडोल स्थिति अनुभव करने के लिए विशेष ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते रहना बहुत जरूरी है. एक बल एक भरोसे द्वारा ऐसी अचल अडोल स्थिति प्राप्त करने के लिए कुछ एक बातों को जीवन में धारण करना बहुत जरूरी है. उसमें से पहली बात है, एक कहावत प्रसिद्ध है, साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं, साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं. अर्थात सर्वोच्च शिव बाबा जो हैं उनसे अगर हम कनेक्शन रखते हैं, उनको पकड़ कर रखते हैं, तो हमारे हरेक जो कर्म है वो सिद्धि को सफलता को प्राप्त होते हैं. उसके बजाय हम अनेकों को अपना सहारा बना दिया जाए और अनेकों पर विश्वास रखा जाए और कर्म करते रहें, तो हो सकता है कुछ एक में हमें सफलता मिलती है, कुछ एक में नहीं भी मिलती है. इसलिए ये अच्छा है सबको खुश करने के बजाय, सबको अपना सहारा बनाने के बजाय एक बाबा को ही अपना सहारा बनाते हैं, तो हमारे काम सिद्धि को प्राप्त करते हैं और हम खुशी में झूमने लगते हैं. दूसरी पॉइंट है, अचल अडोल स्थिति की अनुभूति करने के लिए तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सोऊं और तुम्ही साथ सर्व संबंध निभाऊं, ये हम भक्ति मार्ग में गाते आए हैं. लेकिन सतयुग त्रेता युग में भी इसकी आवश्यकता नहीं थी. और द्वापर कलयुग में हमें परमात्मा का परिचय न ही था, इसलिए ये अनुभव हम वहां नहीं कर सके। लेकिन जो भक्ति मार्ग में हम गाते थे वो संगम युग में हम प्रैक्टिकल में ला सकते हैं। तो तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग रास रचाऊं, ये स्थूल बात नहीं है। तुम ही संग बैठूं अर्थात बुद्धि के द्वारा सूक्ष्म वतन में या परम धाम में बाबा के साथ बैठूं, तुम ही संग रास रचाऊं अर्थात मन का रास हम उनकी याद में करते रहें, और बुद्धि रूपी हाथ जब उनके हाथ में होता है तो उनके साथ का भी हम बहुत अच्छी तरह से अनुभव करने लगते हैं। तो संगम युग में बाबा को हर संबंध के रूप में जब हम याद करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से हमारी स्थिति अचल अडोल बनती है। तो सारे दिन भर में विभिन्न संबंधों के द्वारा बाबा की कंपनी को हम एंजॉय करें, बाबा के साथ का अनुभव करते रहें। तीसरी बात है, बाबा ही सच्चा निस्वार्थ और सदा का सहारा है। भक्ति मार्ग में हम देखते आए कि द्रौपदी का जब चीरहरण हरण हो रहा था तो वो अपने बचाव के लिए अर्जुन के तरफ देख रही थी तो अर्जुन ने अपने आंखें नीचे कर ली। उसके बाद भीम के तरफ देखने लगी तो भीम ने भी अपनी आंखें नीचे कर ली, और युधिष्ठिर के तरफ देखने लगी तो युधिष्ठिर ने भी अपनी आंखें नीचे कर ली। वो सोचने लगी कि अपने ही लोग मुझे मदद कर नहीं सकते हैं तो मेरा बचाव कैसा होगा। तो अंत में वो कृष्ण का आह्वान करने लगी तो कृष्ण दौड़ा दौड़ा नंगे पैर भागकर उनको मदद करने के लिए आया। यह एक प्रतीक है कि दुनिया में जो भी विनाशी व्यक्तियों के सहारे हैं वो केवल टेम्पररी सहारे हैं, अंत में हमें केवल बाबा ही मदद करने के लिए दौड़े दौड़े आएंगे। इसलिए बाबा पर ही हमें भरोसा रखना है, उन्हीं से ही शक्तियों का बल प्राप्त करते रहना है और अचल अडोल स्थिति प्राप्त करनी है। क्योंकि दुनिया वालों का सहारा लेने के बाद अगर हमें सफलता नहीं मिलती है तो हमारी स्थिति डोलायमान होने की संभावना हो सकती है। इसलिए एक को ही सहारा अनुभव करते रहें। चौथी बात है, पति व्रता और पिता व्रता का जो गायन है उसका हमें प्रैक्टिकल अनुभव अभी करना है। शिव बाबा पतियों का पति हैं। दुनिया में जो सदा सुहागन होती है उन्हों को भाग्यशाली कहते हैं। तो हमारा जो सुहाग है शिव बाबा अजर अमर और अविनाशी हैं, इसलिए हम सभी सदा सुहागन हैं। दुनिया में अगर कोई स्त्री पर पुरुष को याद करती है तो कहते हैं इसका सुहाग खंडित हो गया, ऐसा कहने में आता है। तो हमें बुद्धि में अपने बाबा को बिठाकर सदा सुहागन स्वयं को अनुभव करते रहना है, क्योंकि दुनिया में जो विनाशी पति हो सकते हैं उनका साथ हमें मिल सकता है, कभी नहीं भी मिल सकता है, लेकिन हमारा अविनाशी पतियों का पति, हमारा पति होने के कारण हम सदा सुहागन स्वयं को अनुभव करने लगते हैं। पितावृता अर्थात एक बाबा को पिता के रूप में अनुभव करते रहना, उनकी ही श्रीमत पर, उनकी ही आज्ञा पर चलकर आज्ञाकारी, वफादार, फरमानदार बच्चा या बच्ची अनुभव करके पिता का निस्वार्थ प्यार जब हम करते हैं तो पितावृता का भी संबंध बाबा के साथ हम निभाने लगते हैं। इसलिए पितावृता का भी अनुभव हमें करते रहना है। पांचवी बात है, सर्वशक्तिवान बाप को महसूस करें। कहते हैं शेर का बच्चा शेर ही होता है, तो सर्वशक्तिवान बाप का मैं बच्चा हूं तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अमृत वेले हर रोज ये गीत याद रखें, सदा तू तो महज इंसान नहीं, तुम तो सर्वशक्तिवान की संतान हो, क्योंकि हम केवल इंसान ही नहीं है लेकिन सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान भी हैं। तो ज्ञान में आने के बाद स्वयं को माता या नारी कभी भी नहीं समझें। मैं शिव शक्ति हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं तपस्विनी हूं, ऐसे श्रेष्ठ स्वमान में जब हम रहते हैं तो सर्वशक्तिवान बाप के छत्र छाया में सारे दिन भर में हम अनुभव करने लगते हैं। और सर्वशक्तिवान बाप से धीरे धीरे शक्तियां आत्मा में आने लगती हैं। घड़ा अगर थोड़ा भी खाली होता है तो वो छलकने लगता है, वैसे हमें भी कभी कभी खालीपन या खोखलापन जब अनुभव होता है तो हमारी भी स्थिति दोलायमान होने की संभावना हो सकती है। इसलिए सर्वशक्तिवान बाप से शक्तियां प्राप्त करते रहें, एक बल एक भरोसे से आगे बढ़ते रहें, तो ऐसी अचल अडोल स्थिति बनाने में हम सफल होते रहते हैं। छठवीं बात है, मैंने देखा प्रकाशमणि दादी जी के साथ मुझे 25-30 वर्षों तक रहने का गोल्डन चांस मिला। तो दादी इतना बड़ा यज्ञ का कारोबार संभालती थी, कलयुग में विभिन्न प्रकार के विघ्न आना या परिस्थिति आना ये स्वाभाविक था, लेकिन दादी जी हमेशा अनुभव करती थी कि मेरे एक कंधे पर शिव बाबा हैं और दूसरे कंधे पर फरिश्ता ब्रह्मा बाबा हैं। दुनिया की दो महान तप हस्तियां सदा मेरे साथ रहती हैं, इसलिए अगर कोई भी विघ्न आता है, कोई भी परिस्थिति आती है तो वो सहज ही पार होती है। इसलिए हमेशा दादी जी एक बल एक भरोसा अनुभव करके अचल अडोल स्थिति में सदा स्थित रहती थी। मुझे याद है कभी भी कोई ऐसी विकट परिस्थिति या विघ्न आता था तो दादी दी सबको कहती थी सब काम छोड़ दो और तपस्या में बैठ जाओ। दादी का एक स्लोगन पक्का था, करो तपस्या मिटे समस्या। तो दुनिया की जो भी समस्याएं हैं वो तपस्या के द्वारा ही अर्थात एक बाप की मदद से ही पार हो सकती हैं, ये पूरा निश्चय दादी जी को था। मुझे याद है 1972 की बात है, दिल्ली में रामलीला मैदान पर अपना पहला आध्यात्मिक मेला होने जा रहा था। तो उस समय रशिया के प्रेसिडेंट का वेलकम सेरेमनी वहां करना था, इसलिए हमें सरकार से नोटिस आई थी इस मेले को यहां से खाली कर दो। तो दादी जी ने कहा सब काम स्टॉप करो, सारी रात सभी तपस्या में बैठ जाओ, और दिल्ली में भी सभी सेंटरों पर मैसेज भेज दिया सबको रात भर तपस्या करना है। तो दूसरे दिन हमें समाचार मिला कि सरकार ने अपना फैसला बदली किया, इस ग्राउंड के बजाय दूसरे ग्राउंड पर रशिया के प्रेसिडेंट का वेलकम सेरेमनी करने का फैसला किया। तो कहने का भाव है कोई भी विघ्न यज्ञ में आते हैं उन विघ्नों को पार करने के लिए तपस्या ही हमें मदद करती है, अर्थात एक बल एक भरोसा जो बाबा का है वही हमें मदद करता है। भक्त सातवीं बात है, द्वापर युग में हम गाते थे भक्ति में शक्ति होती है। भक्ति में शक्ति जरूर होती है, लेकिन कब? जब हमारी अव्यभिचारी भक्ति होती है। तो द्वापर युग के शुरू में हम सभी अव्यभिचारी भक्ति करते थे, उसके कारण उस भक्ति में शक्ति की अनुभूति भी हम करते थे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो भक्ति भी अव्यभिचारी होती गई, और भक्ति में जो शक्ति की अनुभूति करते थे उसमें भी कमी आ गई। तो कहने का भाव है अव्यभिचारी बाबा की जो याद है वो हमें बहुत शक्ति देती है। शास्त्रों में हमारी अचल अडोल स्थिति की यादगार अंगद के रूप में गाई जाती है। अंगद जब राम का नाम लेकर उसने अपना पैर गाड़ दिया तो रावण उसके पैर को हिला नहीं सका। तो अंगद के दो अर्थ हैं, अंगद जिस अर्थात जिसने देह रूपी अंग को भुला दिया, आत्मिक स्वरूप में स्वयं को टिका दिया, वही ऐसी अचल अडोल स्थिति की अनुभूति करता है। और दूसरा अर्थ है अंगद गद गद होना, जब अंगद की तरह अचल अडोल स्थिति की अनुभूति करते हैं तो हमारा हर अंग गद गद होता है, अर्थात हम खुशी में झूमने लगते हैं, अर्थात अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने लगते हैं। ये हमारी ही यादगार है। तो हमें बुद्धि रूपी पैर बाबा के भरोसे पर और बल पर अगर हम पक्का रखते हैं तो रावण हमारे बुद्धि रूपी पैर को हिला नहीं सकता, ये उसका भावार्थ है। तो ऐसी अचल अडोल स्थिति को प्राप्त करने के लिए विशेष दो बातों पर हमारी बुद्धि की पकड़ होना जरूरी है। हम देखते हैं बाबा के बच्चे बाबा के पास आते हैं, दो चार साल स्थिति उनकी बहुत अच्छी होती है, बाद में स्थिति में हलचल आने लगती है। तो बाबा के पास आने के बाद अगर हम अचल अडोल स्थिति बनाना चाहते हैं तो उसका सीक्रेट क्या है, उसका गुह्य राज क्या है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। अगर हमारी स्थिति अचल अडोल नहीं होती है तो माया हमें कठपुतली की तरह नचाने लगती है। इसलिए सर्वशक्तिवान की पालना लेते हुए माया हमें नचाती रहे ये शोभा नहीं देता है। इसलिए अचल अडोल स्थिति बनाने का गुह्य राज है दो बातों पर हमारी बुद्धि की पकड़ होना। पहली बात है आत्म अभिमानी स्थिति पर हमारी बहुत अच्छी पकड़ हो। आत्मा का जो हम अभ्यास करते हैं वो बहुत विधि पूर्वक हमें अभ्यास करते रहना है। एकांत में बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र से स्वयं के स्वरूप को ज्योति बिंदु स्वरूप को हमें देखना है और आत्मा के जो सात गुण हैं मूल गुण हैं एक के बाद एक का अनुभव हमें करते रहना है। तो जब आत्मिक स्थिति हमारी गहराई से बढ़ने लगती है तो स्वतः ही बाबा की याद आने लगती है। कहावत भी प्रसिद्ध है, जब समझते हैं काया तो आ जाती है माया, जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। आत्मा समझते ही बाबा की याद आने लगती है और हमारे विकर्म भस्म होने लगते हैं। तो ये जो काया है ये माया की प्रॉपर्टी है, आत्मा है ये ईश्वर की प्रॉपर्टी है। तो आत्मिक स्थिति में स्थित होते ही ईश्वर की याद आने लगती है और बहुत अच्छी स्थिति हमारी होने लगती है। और देह के पदार्थ और देहधारियों के तरफ हमारा आकर्षण होना बंद हो जाता है। दूसरी बात है आत्मा की स्थिति जैसी जैसी गहराई से बढ़ती है और शक्तिशाली बनती जाती है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ या मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, इस रूप में हम बाबा के पास जब हम बैठते हैं तो परम धाम में बाबा के बाजू में बैठते समय आत्मा बहुत शक्तियां स्वयं में ग्रहण करने लगती हैं। अगर हमारी मन की बैठक साधारण हो तो हमें बहुत साधारण शक्तियों की अनुभूति होती है। परम धाम में बाबा के पास बैठते समय तीन बातों पर हमें खास ध्यान देना है। पहली बात, स्वयं को कभी भी साधारण आत्मा समझकर नहीं बैठना है। बाबा शक्तिशाली तो मैं भी मास्टर शक्तिशाली आत्मा हूँ, उस रीति से बैठने से हमें बहुत अच्छी तरह से शक्तियां मिलती हैं। दूसरी बात है बाबा से हमें कभी भी मांगना नहीं है। बच्चे माना अधिकारी, भगत माना भिखारी। तो अधिकारी रीति से जब हम बाबा के पास बैठते हैं तो बाबा से बहुत सुंदर मिलन हम मनाते हैं और मिलन का भरपूर आनंद हम लूटते हैं। तीसरी बात, परम धाम में बैठ बाबा के बाजू में बैठते समय कभी भी हमें हिचकना नहीं है, क्योंकि बाबा पवित्रता के सागर हैं। मैं मुझ आत्मा पर अपवित्रता के काले दाग हैं, धब्बे हैं, इसलिए कभी कभी हमें थोड़ा सा संकोच होता है। तो हमें निसंकोच बाबा के पास बैठना है। उसके दो कारण हैं, बाबा ने हमें सजनियों के रूप में स्वीकार किया है। सजनी कैसे भी हो, उसको अपने साजन के समीप बैठने का अधिकार होता है। दूसरी बात, बाबा ने हमें बच्चे के रूप में स्वीकार किया है। बच्चा कैसा भी हो, उसको अपने बाप की गोदी में ही नहीं कंधे पर भी बैठने का अधिकार होता है। इसलिए बड़े ठाट से बाबा के बाजू में हमें बैठना है और बहुत सुंदर शक्तियों की अनुभूति हमें करते रहना है। तो ये पहली बात है। और दूसरी बात, अचल अडोल स्थिति बनाने का गुह राज है, सदा स्वमान धारी होकर रहना। स्वमान शब्द को धारण करने से बाप समान बन सकते हैं। तो सदा स्वमान में ही हमें स्थित रहना है। बाबा ने जब इस संस्था की स्थापना की थी कराची में, तो एक पॉलिसी को अपनाया था। बाबा के पास में 350-400 लोग आए, उसमें छोटे छोटे बच्चियां, बूढ़ी बूढ़ी माताएं और कुछ एक भाई आए थे। बाबा ने क्या किया, जो अनेक जन्मों से आत्माओं का स्वमान गिरा हुआ था, उस स्वमान को बाबा ने ऊंचा उठाया। बस केवल इतना ही किया। तो जैसे आत्माओं के स्वमान को ऊंचा उठाया, हमारी दादियां देखो बिल्कुल सिंपल थी, कोई उन्होंने डिग्री नहीं ली कॉलेज की, लेकिन स्वमान का चमत्कार ये दिखाई दिया, उनकी सोई हुई शक्तियां जागृत होने लगी और उनका व्यक्तित्व निखरने लगा। और आज वो हमारी दादियां विश्व पर राज कर रही हैं, बड़े बड़े गुरुओं को भी चैलेंजेस कर रही हैं। ये सारा स्वमान का चमत्कार है। तो स्वमान में रहने से आत्मा में जो भी प्रतिभा होती है, जो भी पोटेंशियल होता है, जो क्षमता होती है, जो शक्तियां होती हैं, वो सारी जागृत होने लगती है। हमारे व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। और दूसरा लाभ स्वमान में रहने से, हमारा मन और बुद्धि खुशी से और नशे से भरपूर रहता है और सदैव हल्का फुल्का अनुभव करने लगता है। और हल्का फुल्का मन और बुद्धि ऑटोमेटिक परम धाम की ओर जाने लगती है और बाबा के पास, बाबा के बाजू में बिठाने का काम करती है, जिससे बाबा से कनेक्शन हमारा स्वतः ही जुट जाता है। ये बहुत जबरदस्त लाभ स्वमान में रहने से होता है। इसलिए किसी भी हालत में जो बाबा ने हमें स्वमान का सिंहासन दिया है, उस सिंहासन को हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत प्राप्तियां कराने वाला ये सिंहासन है। क्योंकि जो भी कई बार हम देखते हैं स्वमान का पॉइंट बहुत बड़ा होता है, हम सोचते हैं हमारे में तो बहुत कमियां हैं, खामियां हैं, त्रुटियां हैं, मैं तो ये स्वमान के टाइटल के लायक हूं नहीं, कैसे मैं इसको स्वीकार करूं। दुनिया में एक ही बाबा ऐसे हैं जो सदा सत्य बोलते हैं। उन्होंने को हमारी महिमा करके हमारे से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो वास्तविकता है उसमें स्थित कराने के लिए बाबा हमें ये स्वमान का इतना ऊंचा टाइटल देते हैं। तो हमें थोड़ा सा भी डाउट न लाते हुए उस स्वमान के पॉइंट को अपने जीवन का टाइटल अनुभव करना है और वो टाइटल रूपी टाई ही पहनकर हमें एक सेवा सेवा के क्षेत्र में जाना है तो सारे दिन भर में आपको ईश्वरीय नशा और ईश्वरीय खुशी की अनुभूति होती रहेगी। क्योंकि हम देखते हैं बाबा की कंपनी सदा अनुभव करने के लिए ये सामान बहुत हमें मदद करता है। तो माताएं कौन सा सामान लेंगी, मैं जगत माता हूँ, मैं तपस्विनी हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं अनेक आत्माओं की दुर्गंध को मिटाने वाली दुर्गा हूँ, मैं अनेक आत्माओं की काली माँ को मिटाने वाली महाकाली हूँ, जो भी टाइटल आपको अच्छा लगता है वो टाइटल आपको सेलेक्ट करना है और उस पर मनन चिंतन करके उस टाइटल वालों की क्या विशेषताएं होगी, क्या उसके गुण होंगे, कैसा उसका सोचना होगा, कैसी उसकी चलन और चेहरा होगा, ये सब मनन चिंतन करके वो अपने जीवन में धारण करते चलें, तो देखेंगे आपकी स्थिति का स्तर बहुत ऊंचा उठता जाएगा। ये मैंने अपने जीवन में अच्छी तरह से अनुभव किया है क्योंकि सामान का पॉइंट याद आते ही हमें परम धाम की फ्लाइट मिलती है। परम धाम में बाबा के बाजू में वो बिठाने का काम करता है। कोई हमारा अपमान भी करता है, कोई ऊंची नची परिस्थिति भी हमारे जीवन में आती है, फिर भी हमें कभी भी ग्लानी महसूस करके सामान के सिंहासन से नीचे उतरना नहीं है, ये दूसरा राज है। तो जैसे जैसे हम सामान में स्थित होते जाते हैं और ऊंचा नशा अनुभव करने लगते हैं तो आत्मा में रॉयल संस्कार, नोबल संस्कार धारण होने लगते हैं। क्योंकि संगम युग में हमें चांस मिलता है रॉयल संस्कारों को, बहुत नोबल संस्कारों को आत्मा में धारण करने के लिए। तो जितना ऊंचा ईश्वरीय नशा रहता है उतने ऊंचे संकल्प हमारे मन में चलते हैं, उतने ऊंचे बोल हमारे चलते हैं, ऐसे ऊंचे कर्म हमारे होते हैं और ऐसे ऊंचे संस्कार हमारे बनते हैं। तो जैसी आत्मा परम धाम से आदि में आती है सतयुग के, तो ऑटोमेटिक रॉयल परिवार में हमारा जन्म होता है। तो बहुत अच्छा गोल्डन चांस हमें बाबा ने दिया है। श्रेष्ठ सामान सारे दिन भर में रख कर श्रेष्ठ संस्कारों को धारण करते जाना। बाकी हम देखते हैं एक बल एक भरोसा, जिसका बाबा पर पूरा भरोसा होता है बाबा मदद करने के लिए दौड़ता है। दो वर्ष बाबा ने पहले दो वर्ष पहले कहा था कि अगर कोई भी बच्चा दिल से मुझे बाबा के पुकारे, हजार भुजा वाला हजूर सेकंड में हाजिर हो जाएगा, ये बाबा के बोल हैं। लेकिन उस कि बाबा की मदद लेने के लिए बाबा पर हमारा इतना भरोसा होना चाहिए, इतना निश्चय होना चाहिए, तभी बाबा की मदद लेने के लायक हम बन सकते हैं। नहीं तो बाबा भी पीछे हटते हैं। बाबा से मदद लेने की एक ही शर्त है, एक कदम हिम्मत से आप आगे बढ़ाओ तो हजार कदम मैं आपको मदद करने के लिए दौड़ता आऊंगा। तो इस रीति से हमें बाबा की मदद लेते जाना है और एक बल एक भरोसे से स्थिति को अचल अडोल बनाना है। ब्राह्मण जीवन में एक बात कभी भी नहीं भूलना है, जैसी स्थिति वैसी स्तुति हमारी होती है। अगर हमारी स्थिति नहीं तो स्तुति भी नहीं होगी। जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था, आत्माओं के द्वारा भी और प्रकृति के द्वारा भी होती हैं। इसलिए बाबा के पास आने के बाद मुझे बहुत अच्छी अच्छल डोल स्थिति बनाना है, अवस्था बनाना ही है, ये दृढ़ संकल्प हमारा सदा रहे तो हमें बाबा की मदद स्वतः ही मिलती है। तो चंद घड़ियों के लिए हम बहुत सुंदर योग की अनुभूति करने जा रहे हैं, क्योंकि बाबा इतना उच्च कोटि का ज्ञान देते हैं, उसकी ब्यूटी है बहुत सुंदर गहन योग के अनुभव करना। करना चाहेंगे सभी? हाँ जी, सभी करना चाहेंगे, हाथ खड़ा करो जो करना चाहते हैं। बहुत अच्छा। तो अभी 10 मिनट के लिए बहुत पावरफुल योग की अनुभूति हम कर रहे हैं, कोई भी बीच में नहीं उठेंगे। ओम शांति। इस देह रूपी मकान में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक आंखों रूपी खिड़कियों के पास भ्रुकुटी के बीच विराजमान हूँ। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता का सुंदर तार चारों ओर अनुभव हो रहा है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। भाग्य विधाता भगवान ने मेरे भाग्य का सितारा चमका दिया है। मैं भाग्यशाली आत्मा शरीर रूपी मकान से बाहर निकलकर परम धाम रूपी घर की ओर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ। इस साकारी दुनिया से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूँ। फरिश्तों की दुनिया में
پہنچ گئے ہو, مجھ نراکار جوتی بندو آتما نے بہت سندر فرشتہ سوروپ کی چمکیلی ڈریس دھارن کر لی ہے, کتنی ہلکی پھلکی ڈریس ہے یار, اوہو فرشتوں کے راجہ پیارے برہما بابا اپنے سمپورن فرشتہ سوروپ میں میرے سمکش ویراجمان ہے, میری اتی پیاری اتی میٹھی شیو بابا بھی ان کے پرکٹی میں چمکتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, باپ دادا مجھے شکتیشالی درشٹی دے کر نظر سے نیال کر رہے ہیں, میں فرشتہ بابا کی شکتیشالی درشٹی سے شکتیاں سویم میں گرہن کر رہا ہوں, فرشتہ سوروپ کی ڈریس کو چھوڑ کر میں نراکاری جوتی بندو آتما نراکاری دنیا کی اور اڑتے ہوئے جا رہی ہوں, جا رہی ہوں نیراکاری دنیا میں پرم دھام روپی پیس پیلس میں پہنچ گئے ہوں, کتنا سندر ہے یہ پیس پیلس پرم دھام, چاروں اور سنہری لال ہلا دیویا پرکاش ہی پرکاش ہے, شانتی ہی شانتی ہے, اوہ میرے پرانوں کے پران میرا ایک بل ایک برسا پیارے شیو پتا مجھ آتما کے سمکش وراجمان ہے, میں آتما اپنے دیویہ نیتر سے پیارے بابا کی سندر چبی کو نہار رہی ہوں, بابا میرے نینوں کے نور بن چکے ہیں, بابا میرے سنسار بن چکے ہیں, ستیم شیوم سندرم پیارے شیو پتا گیان سوریہ ہے آدھیاتمک شکتیوں کی ادا ساگر ہیں, شکتیوں کے ساگر گیان سوریہ شیو پتا سے بےحد شکتیشالی کرنوں کی ورشا مجھ آتم جوتی پر نرنتر ہو رہی ہے, ہوتی ہی جا رہی ہے, میں آتما بندو گیان سوریہ پرماتما سے प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती जा रही हूं। योग की ज्वाला में मेरे जन्म जन्मांतर के पांव पालावर में धकता हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम हल्की फुल्की शक्तियों से भरपूर अनुभव कर रही हूं। ज्ञान सूर्य स्नान कर रही हूं, ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन, निराकारी दुनिया से वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं। और इस शरीर रूपी मकान में आंखों रूपी खिड़कियों के पास पुनः विराजमान हो चुके हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर इस वायुमंडल में फैल रही है, वायुमंडल को शक्तिशाली बना रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु हूँ। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है, धमक रही है। अष्ट शक्तियों की चमक मौसम मस्तक मणि आत्मा से चारों फैल रहे हैं। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति।